आपको पता है मैं दुखी होता हूं या सुखी भी होता हूं, संतुष्ट भी होता हूं और असंतुष्ट भी होता हूं। किस कारण से होता हूं, मुझको दिखाई पड़ता है उसका कारण संसार में है, लेकिन आप उसकी वास्तविकता देखो, उसकी वास्तविकता मन के अंतर्गत है ना कि संसार के अंतर्गत। जैसे कि मिठाई मीठी होती है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति खाए उसे कहेगा ये मीठी है, सफेद जैसा मिठास लगता है ना। लेकिन मिठाई भी अच्छी बुरी होती है, जिसको मन पसंद मिठाई मिल गई उसके लिए अच्छी है, जिसको मन पसंद नहीं मिली वो बुरी है। तो वस्तु एक ही है, उसका गुण धर्म भी एक ही है, लेकिन जो उसका असर है मेरे ऊपर जो पड़ रहा है, जो उसको खाने वाला है या जो उसको भोगने वाला है, उस पर अलग अलग असर आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई व्यक्ति बहुत खुश हो रहा है, कोई कम खुश हो रहा है, कोई इसको देख के चिड़चिड़ापन महसूस कर रहा है। तो मिठाई वही है, भोगने वाले जीव भी सब एक ही जैसे हैं, लेकिन डिफरेंस कहां आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो ये आ रहा है मेरे मन के संस्कारों के कारण, और सबके मन अलग अलग तरीके के हैं, उनके संस्कार में बदलाव है। तो इसीलिए वस्तु एक होने के पश्चात भी विभिन्न जीवों पर, मैं बात जीव की ही कर रहा हूं क्योंकि विषय वही है, जीव उसे कहते हैं जो देह के द्वारा जीवन जीता है और जो देह और मन के द्वारा सुख दुख संतोष असंतोष महसूस करता है उसको जीव कहते हैं। मुझे मालूम है कि मैं महसूस करता हूं, तो शास्त्र ने उसका नाम जीव रखा है, जो अनुभव करने वाली शक्ति है, फील करने वाली शक्ति है, तो उसका नाम जीव रखा है। और महाराज जी ने इसी जीव को बुद्धि भी कहा है, इसलिए यदि संत अवलास पढ़ते हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, या अन्य शास्त्री पढ़ते हैं, वहां बुद्धि का प्रयोग किस सेंस में किया गया है, जीव के भाव में किया गया है या निश्चयात्मक शक्ति के भाव में किया गया है, ये आपको वहां देखना पड़ेगा। तो महाराज जी ने बड़ा स्पष्ट लिखा है संत अवलास में, जीव यानी बुद्धि, इसका मतलब वो ज्यादातर बुद्धि की बात जहां कर रहे हैं तो वहां बुद्धि से मतलब उनका जीव से है, अनुभव करने वाली शक्ति से, ठीक है ना। तो जब वही मिठाई चार लोग देखते हैं, उसको खाते हैं, तो अलग अलग प्रभाव चारों पर पड़ रहा है, अलग अलग सुख महसूस कर रहे हैं, अलग अलग बेचैनी महसूस कर रहे हैं, अलग अलग संतोष या असंतोष महसूस कर रहे हैं। तो वस्तु एक ही है, खाने वाला जीव भी एक जैसा ही है, लेकिन ये अंतर क्यों है? तो ये अंतर मेरे मन के संस्कारों के कारण है। और सबके मन में संस्कार अलग अलग तरीके के हैं, तो मेरे ऊपर असर अलग अलग क्यों पड़ रहा है? मन के संस्कारों के कारण। इसका मतलब मन के संस्कारों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है, मन के संस्कारों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है। ये ऐसे ही समझ लो, सूर्य एक ही है, सूर्य की लाइट भी एक ही कलर की है, यदि चार कलर के ग्लासेस उसके सामने रख दिए जाएं, तो ग्लास में से जो लाइट निकलेगी तो अलग अलग रंग की निकलेगी, नहीं निकलेगी। तो सूर्य की लाइट सब पर समान पड़ रही है, लेकिन जो ग्लास से पास होकर मेरे ऊपर लाइट आ रही है वो अलग अलग कलर की होके आ रही है। तो ग्लास क्या है, ये मन जैसा समझ लो, और कलर क्या है, उसके संस्कार है मन के। तो जैसा जिसका मन है वैसा ही सुख वही है, वस्तु वही है, सबके लिए कॉमन है, लेकिन उसका प्रभाव सबके ऊपर अलग अलग तरीके का है, क्योंकि मन के संस्कार अलग अलग तरीके के। तो ये जो संस्कार है, मैं जितने भी कर्म करता हूं, जितनी भी चीजें पसंद करता हूं नापसंद करता हूं, तो जैसे मेरे संस्कार हैं वैसे ही उन चीजों का प्रभाव, उन कर्मों का प्रभाव, उन व्यक्तियों का प्रभाव, सारी प्रकृति का प्रभाव मेरे ऊपर डिफरेंट तरीके से पड़ता है। जैसे कि आपको यदि शोरगुल में बिठा दिया जाए, जहां संसारी गप लड़ा रहे हों, आपको बिठा दिया जाए, आपको ये क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो लोग बातचीत कर रहे हैं उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं उसको। क्यों एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि उनके रजोगुणी संस्कार। तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, फिल्म की बात होना चाहिए, भोग विलास की बात होना चाहिए, उसके लिए कर्म करने की बात होनी चाहिए, इसमें उनका एंजॉयमेंट मिलता है, क्योंकि संस्कार उनके रजोगुणी। और यदि आपको किसी ऐसे लोगों के पास बिठा दिया जाए जैसे कि यहां बैठे हुए, तो आपको अच्छा लग रहा है, आप घर छोड़कर यहां पर, घर के आराम छोड़कर यहां पर तप में रह रहे हो, फिर भी आपको अच्छा लग रहा है। ये क्या सिद्ध करता है कि आपके मन के अंदर सतोगुणी संस्कार है। इसलिए सतोगुणी वातावरण, सतोगुणी बातें, अर्थात ईश्वर संबंधी बातें और सतोगुणी व्यवहार आपको अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार चोर हो, डकैत हो, जेब कतरे हो, स्मोकर्स हो, अफीमची हो, सबको अपनी अपनी कम्युनिटी पसंद आती है, उसमें वो प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उनके तमोगुणी संस्कार। तो संस्कार जहां रहते हैं उसी का नाम तो मन है ना। तो मैं अच्छी तरह से देख रहा हूं कि जैसे जैसे संस्कार, चाहे मैंने पूर्व जन्म में बनाए चाहे इस जन्म में बनाए, उन संस्कारों के अनुसार मुझको अच्छा और बुरा लगता है। इसका मतलब हो गया कि वस्तु या संसार या लोग ना अपने आप में अच्छे हैं ना अपने आप में बुरे हैं। जैसे संस्कार मेरे हैं वैसा ही प्रभाव मेरे ऊपर उनका आ रहा है। इसका मतलब मैं निर्मल हूं, मन मलयुक्त है, मन विकार युक्त है। ये संस्कार जितने भी हैं, हम उनका जब कंपैरिजन करते हैं तो कहते हैं ये अच्छा है ये बुरा है, जैसे करते ना ये छोटा है ये बड़ा है, अपने आप में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, कंपेयर करो तब आप कहते हो ये छोटा है ये बड़ा है। तो तुलनात्मक दृष्टि से कोई वस्तु छोटी है कोई बड़ी है, ये तुलना ना करो तो बस वस्तु है, ना छोटी है ना बड़ी, ये बात है या नहीं। तो हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हर चीज को तुलना करके देखते हैं, कंपेयर करके देखते हैं, द्वंद्व रूप में देखते हैं, ये सुख देगी ये दुख देगी, ये फायदा पहुंचाएगी ये नुकसान पहुंचाएगी। हमारी 100% सोच, जिसको सांसारिक सोच कहते हैं या जिसको प्राकृतिक सोच कहते हैं, वो सोच द्वंद्व में खड़ी हुई है। इसलिए हर वस्तु जो हम देखते हैं, जो भोगते हैं, हर कर्म जो करते हैं, वो संस्कार मेरे मन पर बना लेती है, क्योंकि हर चीज में द्वंद्व मौजूद है, मेरी लाइकिंग डिसलाइकिंग मौजूद है। तो मेरी नजर ही वैसी है कि हर वस्तु जो मैं भोग करता हूं, हर वस्तु जो मैं देखता हूं, हर कर्म जो करता हूं, उसके संस्कार मेरे मन के ऊपर बनते चले जाते हैं। जबकि सत्पुरुष भी कर्म करता है, सत्पुरुष भी खाना खाता है, सत्पुरुष भी संसार को देखता है, लेकिन उसके मन पर कोई संस्कार नहीं बनता। तो सत्पुरुष में मुझमें अंतर क्यों है? ये देह से वो भी मानव है, देह से मैं भी मानव हूं। सत्पुरुष के मन के मन पर कोई संस्कार नहीं बंधा है और मेरे मन पर हर वस्तु का हर एक्शन का संस्कार बंधा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सत्पुरुष है वो भी अनुभव कर रहा है, ऐसा नहीं है कि अनुभव नहीं कर रहा, वो जानता है सुख और दुख क्या होता है, अनुभव से जानता है सुख दुख क्या होता है, अनुभव से जानता है कि ये खट्टा है ये मीठा है, अनुभव की कमी नहीं होता। लेकिन संस्कार फिर भी नहीं बन रहा है क्योंकि वहां उसकी किसी वस्तु के लिए डिजायर नहीं है, किसी वस्तु के लिए वहां कामना नहीं है, वो निष्काम है। जो निष्काम है तो उसका जीवन आपको सिद्ध कर रहा है कि इसके ऊपर सुख दुख का कोई असर नहीं, ये शांत है, ये आनंदित है। हम कहते नहीं कहते सत्पुरुष जो है हमेशा आनंद में रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, दुनिया की कोई चीज उनके मन को हिला नहीं सकती, कहते नहीं कहते। उनके जीवन से ये साफ चीज पता लगती है, किसी भी सत्पुरुष के जीवन को देख लो, ईसा मसीह को फांसी पे चढ़ाया गया, क्रॉस पे चढ़ाया गया उनको, तो ईसा मसीह ने क्या कहा था, कितने शांत चीज थे कि ये जो मुझको सजा दे रहे हैं प्रभु तो इनको माफ करना, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। कहीं है लेशमात्र भी भय की बात, वहां पर उनके एक्शन से पता लगता है, उनकी बातों से पता लगता है, कहीं है कि उस व्यक्ति को भला बुरा कहना, भगवान तुझे सजा देगा तू निर्दोष को फांसी पे चढ़ा रहा, कहीं है ये बात, है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके लिए शरीर का महत्व ही कोई नहीं है, सत्पुरुष के लिए शरीर का कोई महत्व ही नहीं है, इसलिए जब महत्व नहीं है तो सीधी सी बात है कि वो महत्व होना ना होना तो मन के संस्कार है ना, इसका मतलब मन के अंदर संस्कार ही नहीं बचे उसके लिए, मन निर्मल है। इसलिए रामकृष्ण परमहंस एक बात कहते हैं, वो कहते हैं निर्मल मन निर्मल बुद्धि और आत्मा एक ही चीज है। और रामायण भी कह रही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो जाता है वो मुझे पा लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मन के अंदर जो संस्कार हैं जन्म जन्मांतर से, और इस जन्म में बचपन से हम इच्छा करके तो सारे कर्म कर रहे हैं, बचपन से लेके आज तक ये बच्चा पैदा होता है, अभी बुद्धि उसकी विकसित नहीं हुई है लेकिन संस्कार लेके आया है, मन साथ लेके आया है, जो पूर्व जन्म में जो मन तैयार किया था उसने वो उसके संग आया है। इसलिए हर बच्चे में लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। एक दिन का बच्चा हो उसको आप मीठा चटाइए या नमकीन चटाइए, एक बच्चा मुंह बनाएगा मीठा चखते ही मुंह बनाएगा, एक बच्चा फट से चाट लेगा उसको। एक मुंह क्यों बना रहा है, एक चाट क्यों ले रहा, कारण यह है कि उसके अंदर मन के अंदर संस्कार है कि पूर्व जन्म में उसको नमकीन प्रिय थी मीठा प्रिय नहीं था, किसी को मीठा प्रिय होता है नमकीन प्रिय नहीं होती, देखा नहीं आपने, लड़कियों को खास तौर से देखो आप, चाट पसंद होगी उनको, चटपटे आइटम पसंद होंगे, मीठा कम पसंद होगा, लड़कों को मीठा ज्यादा पसंद होगा चटपटे आइटम कम पसंद होते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से। तो डिफरेंस कहां है, डिफरेंस संस्कारों का, वहां लड़के लड़की की बात नहीं है। तो ये संस्कार हमारे हैं जो प्रभाव मेरे ऊपर डालते हैं क्योंकि वो एंजॉयमेंट मैंने किया है, जो चीज होश में है, जो चीज जानने वाली है, जो जिंदा वस्तु है, मैंने अभी मान लिया दूध पिया तो दूध अच्छा है बुरा है, दूध तो वैसे ही वैसा है, तो मुझे अच्छा बुरा क्यों लग रहा है, जैसा है वैसा लगना चाहिए, नहीं लगता वैसा हो तो वैसे संस्कार मेरे मन में है ना। तो ये संस्कार क्यों बने, मेरी डिजायर के कारण, मैं वासना के वशीभूत होकर जीवन जी रहा हूं ना, इसलिए हर कर्म हर भोग मेरे अंदर जो है संस्कारों का निर्माण करता है, और वो संस्कार कहां इकट्ठे होते हैं, मन के अंदर इकट्ठे होते हैं। तो जब तक ये संस्कार आपके मन के अंदर अच्छे बुरे मौजूद हैं, तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी संस्कार मौजूद हैं, तब तक जीव को शांति नहीं मिल सकती। शांति का नाम आप संतोष कह लीजिए, उस शांति का नाम आप चैन कह लीजिए, नाम आप कोई दे लीजिए उसको, लेकिन जीव हमेशा बेचैन रहेगा। क्यों बेचैन रहेगा? क्योंकि हर अनुभव उसका द्वंद्व को लिए हुए है। तो पूरी प्रकृति की रचना, क्योंकि द्वंद्व के अंतर्गत आती है, हर वस्तु द्वंद्व के अंतर्गत आती है, इसीलिए कोई वस्तु बनती है, यदि बनी तो नष्ट भी होगी, तो बनते ही इसका नष्ट साथ में जुड़ गया उसका। कोई वस्तु का निर्माण हुआ मान लिया, तो जिस दिन से निर्माण हुआ उसी दिन से वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं ना एजिंग इफेक्ट। एक दिन का भी प्रभाव पड़ता है लेकिन हमको वो दिखाई नहीं पड़ता, 10 साल का प्रभाव दिखाई पड़ जाएगा उसी वस्तु को। तो निर्माण होते ही उसका नष्ट होना शुरू हो गया। तो वही बात है कि प्रकृति में हर चीज द्वंद्व रूप है। सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, सर्दी है तो गर्मी है, जन्म है तो मौत है, स्वास्थ्य है तो रोग है, हर चीज द्वंद्व में है ना। और किसी मनुष्य से किसी चीज के बारे में पूछ लो, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, हर चीज के बारे में उसका यही निर्णय है कि ये चाहिए ये नहीं चाहिए। इसी को ही राग और द्वेष कहते हैं, एक को लाइक करना एक को डिसलाइक करना, ये राग द्वेष है। तो पूरा जीवन मेरा जो मानव जीवन है वो राग द्वेष में ही बीतता है, इसका मतलब संस्कारों के निर्माण करने में बीतता है। तो सतमार्ग क्या है, अध्यात्म मार्ग क्या है? अध्यात्म मार्ग शांति का मार्ग है नहीं, राग द्वेष से मुक्त होने का मार्ग है नहीं, इस प्रकृति के बंधन से या देह के बंधन से मुक्त होने का मार्ग है या नहीं? यदि मैं देह होता, विचार करने की बात है, ये आपको विचार करना ही पड़ेगा भाई, यदि मैं देह होता तो देह के साथ सब कुछ खत्म हो गया। फिर दुनिया वालों से ही पूछ लो, नहीं अध्यात्म विद्या पढ़ी कोई बात नहीं है, दुनिया वालों से ही पूछ लो ये क्या कर रहे हो मरने के बाद, तुम तो देह हो, बहस करने की जरूरत ही कुछ नहीं, तुम देह हो या नहीं हो, कोई सारा संसारी तो इससे ऊपर जानता ही नहीं। तो ये मर गई तो कुछ बचा ही नहीं, तो किसके लिए कर रहा हो ये कर्मकांड? और सारी दुनिया लगी पड़ी, पूरी दुनिया लगी पड़ी, चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियंस हो चाहे हिंदू हो कोई भी हो, कर्मकांड सब जगह होता है, किस रूप में होता है वो उसमें अंतर है। तो इनसे पूछो जरा किसके लिए कर रहे हो भाई, मैं अपने बारे में जब देह करके जानता हूं अपने आप को, तो देह जब नष्ट हो गई फिर कर्मकांड किसके लिए कर रहे हो भाई? कोई जवाब नहीं उनके पास, बह जाएंगे वो, अरे वो बस कोई जवाब नहीं बनेगा, अरे वो बस कुछ ना कुछ बोलेंगे वो। तो मैंने दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, मैंने अपने बारे में सोचना है, मैं यही कर रहा हूं कि यदि मैं देह हूं, देह मरने के बाद ये कर्मकांड क्यों किया जाता है पूरी दुनिया में? इसका मतलब पूरी दुनिया मूर्ख नहीं है, कंफ्यूज्ड है, मूर्ख नहीं है वो, कंफ्यूज्ड है। कोई सही ज्ञान बताने वाला मिला नहीं उनको, तो इसीलिए जो मन के मेरे संस्कार हैं उसी के अनुसार मैं वस्तुएं चाहता हूं, उसी के अनुसार मैं संसार में बनना चाहता हूं, उसी के अनुसार मैं कमाई करना चाहता हूं, उसी के अनुसार मैं व्यवहार करना चाहता हूं, उसी के अनुसार मैं परिवार बसाना चाहता हूं, और उसी के अनुसार मैं लोगों से एक्सपेक्टेशंस बनाता हूं। सारा व्यवहार मेरा उन्हीं संस्कारों के अनुसार होता है। तो विचार करने की बात यह है कि इन संस्कारों का प्रभाव देह पर नहीं पड़ता, देह जड़ है, इन संस्कारों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है, और मेरे मन के अंदर जो डिजायर तीव्र हो जाती है, जो मुझे ज्यादा परेशान करती है, तो मैं भाई हुक और क्रुक उसको पूरी करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे अंदर बड़ी बेचैनी होती है। मुझे याद है बचपन में कोई कोई घटना याद रह जाती है। होली का त्योहार आया तो पहले तो ऐसा होता था कि जब त्योहार आता था तभी नई चीजें मिलती थी, कपड़े भी नए बनते थे, पिचकारी भी नहीं मिलती थी। नहीं नहीं, पहले इतने पैसे कहाँ होते थे कि जो आप रखी रहनी चाहिए घरों में। तो अब दो चीजें बचपन में देखी थी, एक बोतल वाली पिचकारी और एक जो है वो पंप वाली पिचकारी। तो फादर से कहा कि हमको वो पंप वाली पिचकारी चाहिए। खैर पिताजी ने दिला दी। जब वो आ गई हाथ में, समझे नहीं, बच्चा बुद्धि है कि इसमें मजा ज्यादा नहीं है, पंप वाली में बोतल वाली में ज्यादा मजा है। और कह तो कुछ सकते नहीं थे, लेकिन मन में परेशान होते रहे, हमने ये पंप वाली पिचकारी बेकार ले ली, बोतल वाली लेनी चाहिए। तो अब बताइए मुझे कि ये क्लेश का कारण क्या है? हमारी मानसिकता ही तो है, मन के अंदर जो हमने लाइकिंग डिसलाइकिंग बनाई है वस्तुओं की, परेशानी का कारण वो है नहीं है। पिचकारी मिल गई लेकिन बेचैनी फिर भी बनी हुई है, और यही संसार जगह होता है। एक डिजाइन देखेंगे मार्केट में किसी को पहने हुए, कहेंगे इस डिजाइन का मैं कोट बनवाऊंगा। अब कपड़ा लिया है, बनवा लिया, बाद में सोचते हैं अरे ये डिजाइन नहीं, ये डिजाइन ज्यादा बढ़िया था, बनवाना ये चाहिए था। बनवाया भी, मेहनत करी, 15 दिन 20 दिन महीना पहना होगा, बस उसका मजा कम हो गया, और वो होना चाहिए था उसे मजा ज्यादा। हमारा हर मामले में यही हिसाब है। तो अब बताइए मुझे, ये संस्कार मन में है ना आपके, और इस मन के ये संस्कार जो है मुझको परेशान कर रहे हैं ना, इसमें कोई डाउट है क्या? तो इस परेशानी से बचने के लिए मैं क्या करता हूं, इसे देह का इस्तेमाल करता हूं नहीं करता हूं? तो गीता यदि कह रही है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, देह एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है, यंत्रारूढ़ानी माया, कैसे इस यंत्र रूपी शरीर को मैं अपनी माया से संसार में घुमाता हूं, गीता जी कह रही, भगवान कह रहे हैं ये। तो मनुष्य क्या करता है कि इस देह का इस्तेमाल करता है मन के अंदर जो डिजायर उठी है उसको पूरी करने की, ये प्रैक्टिस करते नहीं करते। तो जो देह मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है, तो मैं उसको मशीन की तरह देखना चाहिए, या मैं उसको स्वरूप समझाऊ मैं मशीन हूं? मैं यही गलती कर रहा हूं, मैं यही गलती कर रहा हूं कि मैं अपनी परेशानी से मुक्त होने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कर रहा हूं, और संसार वस्तु के रूप में मेरे लिए इस मशीन का इस्तेमाल, इस वस्तु को या मटेरियल को, संसार एक मटेरियल है ना, उसके लिए इस मटेरियल को अपनी वासना पूरी करने के लिए तो यूज करेगा वो। इस मशीन के द्वारा संसार रूपी मटेरियल को, जिसमें लोग भी आ गए, जीव जंतु भी आ गए, मुझे मीट पसंद है तो मार के खा जाऊंगा, मैं इस देह से ही तो मारूंगा, तो मैं अपनी डिजायर को जो मुझे बेचैन कर रही है, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इस देह रूपी मशीन के द्वारा मैं संसार रूपी मटेरियल से उस डिजायर को पूरी करके मैं जो बेचैनी थी उसको शांत करूंगा, ये तो करूंगा। लेकिन मन के अंदर संस्कार तो अनगिनत है, तो पूरी जिंदगी तो यही क्रिया करता रहता है। आज एक वस्तु के कारण बेचैन है, या एक व्यक्ति के कारण बेचैन है, या एक कर्म के कारण बेचैन है, वो तू पूरा करता है उसमें तू संतुष्ट होता है, दूसरा संस्कार नई डिजायर पैदा कर देता है, अब तू उसके कारण बेचैन हो जाता है। तो इसीलिए आपके जीने का तरीका ठीक उसी प्रकार है जैसे कि कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा हो और ये मन में सोच रहा हो ये धारें जरा, ये जो लहरें हैं जरा शांत हो जाएं, तब अपनी नाव में चलाऊंगा तो जिंदगी निकल जाएगी, उसकी नाव नहीं चल पाएगी क्योंकि लहरें कभी शांत नहीं हैं। तो यही मेरी स्थिति है कि चैन से जीऊंगा, जो मेरी वासनाएं हैं इच्छाएं जरा पूरी कर लूं, उसके बाद चैन से जीऊंगा, उसके लिए पुरुषार्थ कर लूं, कर्म कर लूं, एफर्ट कर लूं, फिर चैन से जीऊंगा। तो मनुष्य के जीवन में वो दिन कभी भी नहीं आएगा जब ये चैन से जिएगा, क्योंकि अनंत प्रकार की वासनाएं इसके मन के अंदर इकट्ठी है। तो ये एक को पकड़ लेता है जो ज्यादा परेशान करती है, उसी को लक्ष्य बना लेता है, और उसके लिए 10-10 साल 20-20 साल जिंदगी के लगा देता है। वो पूरी होती है तब पता लगता है उससे ज्यादा परेशान तो अभी दूसरी कर रही है मुझे। कई बार ऐसा नहीं भी होता, कम परेशान करने वाली होती है, वो ज्यादा परेशान करने वाली थी जिसने 20 साल खर्च किए। कई बार ऐसा हो जाता है जो 20 साल खर्च किए उससे ज्यादा स्ट्रांग वासना उसको बाद में पता लगी ये तो मुझे उससे ज्यादा परेशान कर रही है। जैसे को आज कोई पढ़ाई के कारण परेशान है कि मैं केमिस्ट्री में PhD कर लूं, है किसी का संस्कार, वो कर ली PhD उसने, अब PhD करने में 20 साल तो लगे होंगे कम से कम, उसको पढ़ाई करी होगी सारी ऊपर तक जाने में, तो 20 साल लग के उसकी वो डिजायर पूरी हुई है, ठीक है ना। अब उसकी शादी हुई, बीवी खराब आ गई उसकी, अब उससे पूछो तो अब ज्यादा परेशान है या पहले ज्यादा परेशान था, कहेगा उसके बिना तो काम चल भी सकता था, पैसा मैं दूसरी तरीके से करा लेता, कमा लेता, अब क्या करूं, तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद। तो कौन सा आइटम आपकी जिंदगी बर्बाद करेगा, आपका क्या प्रारब्ध है आपको पता है क्या। तो इसीलिए दुनिया में कोई भी मनुष्य हुआ वो किसी चीज से संतुष्ट हो जाता है, किसी चीज से असंतुष्ट हो जाता है, लेकिन संतोष असंतोष का, सुख और दुख का ये जो ग्राफ है ये चलता ही रहता है, ये सिलसिला पूरे जीवन में कभी नहीं टूटता। इसीलिए शास्त्रों का साफ साफ निर्णय है कि नानक दुखिया कुल संसार, उन्हें कोई कंफ्यूजन नहीं, सत्पुरुषों को कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि सत्पुरुष इस दर्द से ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए अब उसको अलग करके देख रहे हैं, हमारे मन, हम सबके मन की स्थिति वो समझ रहे हैं, इसलिए हमारा ही विज्ञान हमको सिखा रहे हैं ताकि हम भी उस मुसीबत से बच सके। हम सिंगल आइटम करके देखते हैं, किसी का बच्चा नहीं हुआ कहेगा बच्चा हो जाएगा तो खुश गृहस्थ जीवन सुखी हो जाएगा, किसी की शादी नहीं हुई शादी हो जाए तो गृहस्थ जीवन मेरा सुखी हो जाएगा, किसी को शरीर रोगी प्राप्त हुआ है जन्म से, अरे शरीर स्वस्थ हो जाता तो स्वर्ग होता दुनिया में, उसको बस सबके शरीर ही दिखेंगे, देखो तो इसको भी स्वस्थ शरीर मिला है, इसको कितना सुखी है, और नहीं दिखेगा उसको, देखो यही दिखेगा कि देखो इसका स्वस्थ शरीर है, इसका स्वस्थ शरीर है, कितना सुखी है, मैं ही दुखी। लेकिन सहजो भाई क्या कर रही है, कोई तो तन मन दुखी, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, देखो मन से दुखी होते नहीं होते, डिप्रेशन क्या है, मन की बीमारी है, तन की बीमारी नहीं है, डिप्रेशन मन की बीमारी है, ये तन की बीमारी नहीं है, और डिप्रेशन वाला कहां है, पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता, नहीं कर देता डिप्रेशन, सुसाइड कर लेते हैं कूद के ऊपर से, क्या हुआ डिप्रेशन में था ये, गले में फंदा लगा के लटक जाते हैं पंखे से, पता लगता है क्या हुआ था डिप्रेशन में था। तो एक डिप्रेशन जो मन की बीमारी है वो तन को भी खत्म कर दे रही है, मैं कभी सोच रहा हूं इसके बारे में कि मन का इलाज कितना जरूरी है? कहां सोच रहा हूं? तो सत्पुरुषों के पास मन का इलाज है। ये डिप्रेशन हुआ है संस्कारों के कारण। तो कौन से संस्कार बनाऊं मैं अपने मन के अंदर ताकि मैं इस संसारिक सुख दुख से मुक्त हो सकूं, मुझे शांति का अनुभव हो, मुझे आनंद का अनुभव हो, ऐसा आनंद का अनुभव जो द्वैत नहीं है, जो द्वंद्व रूप नहीं है। जैसे सुख और दुख ये द्वंद्व रूप है, सुख भोगने की कामना जितनी बढ़ाओगे दुख आपको उतना ही ज्यादा बेचैन करना शुरू कर देगा। जैसे कि एक व्यक्ति जो साधारण पंखे में रहता है गर्मी के मौसम में, तो गर्मी लगती है तो पंखे के नीचे बैठ जाता है, कहता बड़ा चैन मिल रहा है, हवा आ रही है। और जो कूलर में है जिसके पास, वो कहता है पंखे में तो गर्म हवा है, कूलर में बैठ के आनंद आ रहा है, ठंडी हवा मिल रही है। और जिसके पास एसी है वो कहता है नहीं नहीं बड़ी ह्यूमिडिटी है, बड़ी नमी है हवा में, नहीं नहीं कूलर में ठंडी तो हवा आ रही है लेकिन नमी है इसमें, इसमें तो ड्राई एयर मिल रही है। क्वालिटी ऑफ एयर बढ़ती आ रही है ना, तो बीमारी भी बढ़ती आ रही है इसकी। उसको यदि पंखे में रहने को मिल जाए तो कहेगा क्या मुसीबत आ गई मेरी, वो रह नहीं पाएगा पंखे में। एसी का आदि व्यक्ति पंखे में नहीं रह पाएगा, एसी का आदि व्यक्ति कूलर में नहीं रह पाएगा, ह्यूमिडिटी बहुत परेशान करेगी। तो ये हमारी आदतें ही तो हैं, क्योंकि हमने अपना बचपन देखा है पंखा ही नहीं होता था घर में, बिजली ही नहीं होती थी, लालटेन में रहते थे। तो उस समय पिताजी एक पंखा खरीद के लिया है, उस समय IEW के पंखे आते थे, तो सारे बच्चे जो है बड़े खुश थे कि एक पंखा घर में आ गया। वो ऐसी था जैसे पंखे वाले के घर में एसी आ जाए। तो कितना खुश होगा वो, जो पंखे में रहता है घर में एसी लग जाए तो कितना खुश होगा वो। तो ऐसी था जो हम नेचुरल हवा में रहते थे, तो जो पंखा छोटा सा आ गया है तो सब बच्चे बड़ा खुश, घर में एक पंखा आ गया। और सब बच्चों को तो पंखे की हवा खाने को मिलती भी नहीं थी, एक पंखे में कितने लोग हवा खाएंगे। लेकिन मन में कल्पना नहीं थी ना, वो तो दुख भी नहीं था उस चीज का। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने इस प्रकार के संस्कार बनाए हैं मन के अंदर, और ये संस्कार निरंतर बदलते रहते हैं। फैशन बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, साइंस का इंप्रूवमेंट हो रहा है, नई नई रिसर्च आ रही है, तो हर चीज में निरंतर डे एंड नाइट परिवर्तन हो रहा है। तो महाराज कह रहे हैं प्रेमी, इस परिवर्तनशील देह में और परिवर्तनशील संसार में तू स्थाई सुख चाहता है, ये कैसे संभव है? तो हम एक सुख भोग रहे हैं, एक दुख भोग रहे हैं, और कल्पना कर रहे हैं जो दुख है वो भी सुख में एक दिन जरूर बदल जाएगा और एक दिन मैं सुखी हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। ये संभव नहीं है, ये तेरी गहरी अज्ञानता बोल रही है। इसका मतलब तेरे पास विचार की आंख है ही नहीं, वो गायब है। तेरे पास विचार की आंख है ही नहीं जो ऐसा सोचता है संसार के बारे में। तो सहजो भाई ठीक कह रही है, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास। तो तन मन से जो दुखी है वो उदास होता है, वो जीव उदास होता है, उदासी आएगी नहीं आगे कभी। एक एक दुख सवन को, चाहे किसी को भी देख लो, सबके पीछे एक ना एक दुख लगा ही रहता है, ये परमानेंट आइटम है दुख का। हर जीव के पीछे एक ना एक दुख निरंतर लगा ही रहता है। सुखी संत का दास, जिसने किसी ब्रह्म ऋषि के आगे समर्पण किया, जिसने किसी सदगुरु के आगे समर्पण किया, उसके जीवन से जिसने प्रेरणा दी, उसके ज्ञान को जिसने जीवन में सीखने की कोशिश करी, उसको जीवन में अपनाया, वो सुखी है। तो वो सुख कौन सा? वो इंद्रियों का सुख नहीं है, जो मन की कामना पूरी करने के लिए देह से कर्म करता हूं, कर्म करने के बाद जो प्रोडक्ट मैं तैयार करता हूं, मान लिया लड्डू खाने की इच्छा है, लड्डू बना लिया, देह से तो बनाओगे या बाजार से लेके आओगे, देह का इस्तेमाल तो करोगे, फिर मुंह से खाओगे, वो भी देह का इस्तेमाल है, फिर इंद्रियां रिपोर्ट करेंगी ये वैसा ही है जैसी मेरी इच्छा थी। फिर जीव क्या कहेगा, जैसी मेरी इच्छा थी वैसा ही इसमें स्वाद आ रहा है, तो कुछ देर का संतोष मिलेगा। तो ये प्रक्रिया हजारों आइटम में हमारी ऐसी घूमती रहती है। तो यदि आप इस मशीनरी को जैसी है वैसे ही नहीं सोचोगे, जीव, जीव के सुख दुख का कारण उसके संस्कार, और संस्कार से क्या होता है, संस्कार कहां है, मन के अंतर्गत है, और मन के अंदर इन संस्कारों के कारण डिजायर्स की तरंगे पैदा होती हैं, और जो डिजायर मुझको ज्यादा परेशान करती है, जो मुझको पूरी करना जरूरी लगती है, उसको मैं देह के द्वारा कर्म करता हूं उसकी प्राप्ति के लिए, और जब वो वस्तु मुझे प्राप्त हो जाती है तो मैं इंद्रियों के द्वारा उसको भोगता हूं, देखने की वस्तु है तो आंख यूज करता हूं, सुनने की वस्तु है तो कान का प्रयोग करता हूं, खाने की वस्तु है तो जीभ का स्वाद लेता हूं, सूंघने की वस्तु है तो नासिका का मैं उपयोग करता हूं, सर्दी गर्मी मुलायम सख्त का एहसास है, जैसे गद्दे पे लेटते हैं, एसी में लेटते हैं, तो फिर वो त्वचा का उपयोग करता है। ये तो पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, इस पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उस डिजायर को मैं पूरी करने की कोशिश करता हूं। तो ये जो इंद्रियां हैं ये मन को रिपोर्ट करती हैं, और मन का प्रभाव फिर मेरे ऊपर होता है, क्योंकि वो जो डिजायर मन के अंदर उठ रही थी वो धीरे धीरे वो शांत हो जाती है। वो शांति कौन भोगता है, मन भोगता है या मैं भोगता हूं? बेचैनी मैंने भोगी थी या मन ने भोगी थी? मैं भोग, समुद्र में तो लहरें स्वाभाविक उठ रही, परेशान कौन होता है, पथिक परेशान होता है, ये देख रहा है इनको, कब रुकेंगी, कब मैं नाव चलाऊंगा इसके अंदर। लहरों में एक्शन है, लहरों में गति है, लहरों में होश थोड़ा है कोई, मेरे अंदर होश है। मन बेहोश चीज है, इंद्रियां बेहोश चीज है, देह बेहोश चीज है, संसार का मेटेरियल बेहोश चीज है, सब जड़, इसको जड़ बोलते हैं। चेतन मैं हूं, ये कोई लंबा चौड़ा एनालिसिस है क्या, बताओ, नहीं सीख सकता मैं इतना। देखिए इस प्रकार से मैं दिन में एक बार भी रोज सोचू ना, दिन में एक बार भी, मान लिया यही बातचीत हो रही है, इस बातचीत को मैं रोज एक बार सुनू रोज ध्यान से, तो आपको इसके अनुसार सोचने की आदत बन जाएगी, ये भी संस्कार मन में आ जाएगा आपके, ये भी आपके मन का संस्कार बन जाएगा ये इस प्रकार से सोचना। तो फिर जब भी सोचोगे कोई चीज परेशान करेगी तो इस तरीके से सोचना शुरू करोगे, फिर कहोगे ये तो मेरे ऊपर है, मैं इससे परेशान हूं या ना हूं, ये मेरे ऊपर है, वस्तु मालिक नहीं है, मैं मालिक हूं। तो आप चीजों के गुलाम नहीं बनोगे, इच्छाओं के गुलाम नहीं बनोगे, एक्शन के गुलाम नहीं बनोगे, आप की स्वतंत्र सत्ता है। लेकिन आपने एक दूसरी बात आएगी, फिर मेरे जीने का उद्देश्य क्या है? अरे सारी दुनिया इसी तरह तो जीती है, जीने का मतलब ही क्या रह गया? तब सत्पुरुष कहता है, अरे एक और अनमोल चीज है तेरी देह के अंदर, तू भूला बैठे हुआ है इसको, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको जीवन शक्ति कहते हैं, जिसको जिस्म के अंदर जान कहते हैं। तब ये सोचता है, हां जिस्म में जान तो है, ये बात तो ठीक, जिस्म के अंदर जान भी तो है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तब सत्पुरुष कहते हैं कि वो केवल जान ही नहीं है, उस जान को जो जान लेता है, दुनिया की कोई वस्तु उसको दुखी नहीं कर सकती। वो ये बात कहते हैं, उस जान को जो जान लेता है, दुनिया की कोई वस्तु उसको परेशान नहीं कर सकती, वो सदा सुखी है, सदा प्रसन्न है, सदा शांत है। और वो कहते हैं यदि समझ नहीं आती है तो इनके जीवन को देख लो। अरे फकीर तो सारे फक्कड़ ही मिलेंगे आपको, रामकृष्ण परमहंस के पास क्या था, महर्षि रमण के पास क्या था, महाराज जी के पास क्या था, संत कबीर के पास क्या था, गुरु नानक के पास क्या था, ईसा मसीह के पास क्या था, मोहम्मद साहब के पास क्या था, जरा देखो तो सही फकीरों की जिंदगी क्या था उनके पास। लेकिन सारी दुनिया उन्हीं के पीछे भाग रही, फिर भी ये नहीं सोच रही है कि हम भाग क्यों रहे हैं इसके पीछे। अरे जो फक्कड़ है जिसके पास कुछ नहीं था, हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? जब दुनिया में कोई परेशान होता है वही भागता है। हे प्रभु मुझको बेचैनी से बचा, तो उसे प्रभु को याद करता है। तो प्रभु कहता है यदि बेचैनी से मुक्ति चाहिए तो तुझको मेरे पास आना पड़ेगा, और मैं कहीं दूर नहीं हूं, तेरे हृदय में ही विद्यमान हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृत देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सारे प्राणियों का जो ईश्वर है वो उनके हृदय में ही विद्यमान है। भगवान कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं अहम आत्मा गुडाकेश। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं। अब बताइए प्रभु, जिनको हम पूजते हैं, जिनको हम अवतार कहते हैं, जिनको हम कृष्ण कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं इस बात पर जब तक ध्यान नहीं देंगे तो ये बाहर की पूजा से आपकी वो ये अशांति जो संसार की है वो मिट नहीं सकती। कुछ काम हो सकता है सिद्ध हो जाए आपके, लेकिन आपके तो अनंत काम है ना मन के अंदर, कितने सिद्ध करोगे? एक काम सिद्ध कर लोगे दूसरी काम बेचैन कर देगा। इसीलिए सारे ऋषि सारे अवतार एक ही चीज कर रहे हैं कि मैं अंतर्यामी हूं। और ये बात ये मनुष्य कब स्वीकार कर लेता है, करता है? जब ये अपने विज्ञान को समझ लेता है कि मैं जीव हूं। जब तक ये अपने आप को देह समझता है ना, तब तक तो इसको बाहर की उपासना ही समझ में आती है, उसके आगे इसकी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए महर्षि रमण ने कहा कि जब तक मनुष्य अपने आप को देह समझ रहा है तब तक मूर्ति उपासना में कोई गलती नहीं है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब तक आप अपने आप को देह समझ रहे हो और आकार की उपासना कर रहे हो तब तक आप सुख दुख से मुक्त नहीं हो सकते, मन के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, मन के संस्कारों से मुक्त नहीं हो सकते। तो बीमारी तो आपको दूसरी है, इस बीमारी का इलाज अंदर ही है, मन अंदर है, मैं भी अंदर हूं। मन का जो संकल्प है वो मुझको परेशान करता है ना, जब सिमरन करने बैठता हूं तो मन का संकल्प मुझे परेशान करता है, तो वो मन अंदर है या बाहर से कहीं आता है? उस समय तो आपको अनुभव होता है ना, मन अंदर ही है। और मैं कहीं बाहर रह रहा हूं देह के या देह के अंदर ही हूं, यही भाव होता है ना, मैं देह के अंदर ही हूं। और जिस ईश्वर को याद कर रहा हूं वो कहीं बाहर है या देह के अंदर है? तीनों बातें आपको अंदर ही समय अनुभव में आती है कि है तीनों अंदर ही। तो असली जीवन तो तेरा देह के अंदर है मौजूद। इसलिए देह को मंदिर कहा गया है। मंदिर में ईश्वर निवास करता है और भक्त निवास करता है, और भक्त ईश्वर से प्रार्थना करता है, ईश्वर की पूजा करता है। तो देह मंदिर है, देह मस्जिद है, इसके अंदर बैठकर जीव ने उस अंतर्यामी प्रभु की, उस आत्मा की उपासना करनी है। तो जीव इस समय इसका नाम क्या है रखा गया है, जीवात्मा या जीव केवल कहते हैं इसको। तो इसी जीव का जो पूर्ण स्वरूप है, जो मोक्ष स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, उसका नाम है आत्मा। नाम है तो कोई नाम मत रखो, आत्मा कोई नाम मत रखो, जरूर थोड़ा नाम रखना। लेकिन यह तो आपको अनुभव है कि देह को कोई चला रहा है, कोई जिंदा रखे हुए है। तो जो देह को जिंदा रखे हुए है, जिससे कारण ये जिंदा है, उसका नाम उन्होंने आत्मा रख दिया। बस नाम उसका जीवन शक्ति रख, रख दिया, नाम उसका चेतन प्रकाश रख दिया, चेतना है उसमें, वो ऐसा प्रकाश है जो देह को गति दे रहा है, देह को जिंदा रखोगे, देह को प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशित करने का मतलब देह को जीवन दे रहा है, वहां प्रकाश का मतलब क्या है, जीवन से, तो वो उसमें चेतना है, ईश्वर जान, मैं जानता हूं नहीं जानता, जैसे मैं जानता हूं इसी प्रकार ईश्वर भी जानता है। इसलिए महाजी कहते थे, प्रेमी यदि गलती से बचना है तो सदैव याद रखो कि गुरु तुझको देख रहा है। ये कहानी नहीं कह रहे हैं, वो वास्तव में कोई गुरु आत्मा है ना, और गुरु कह रहा है कि सदगुरु तो अंतर्रम है, वो अंदर तेरे निवास कर रहा है और तुझको देख रहा है, तुझको जान रहा है, इसलिए गलती की सजा वो देगा तुझको और अच्छे कर्म का इनाम भी देगा, वो देख रहा है। तेरे अकाउंट में लोग तो गलती कर सकते हैं लेकिन ईश्वर गलती नहीं करता, उसका अकाउंट 100% परफेक्ट है। इसलिए तू यदि गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन जीता है, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार अपने विज्ञान को सीखता है, साइंटिस्ट के मापदंड के अनुसार नहीं, वो तो बायोलॉजी सिखा देगा तुझे कितनी हड्डियां हैं, कितने ज्वाइंट्स हैं, दिल कैसे चलता है, ब्रेन कैसे काम करता है, ये बायोलॉजी सिखा देगा तुझे। तो सवाल ये है कि जो मेरा विज्ञान है, मैंने सीखा नहीं उसको, और दुनिया का साइंटिस्ट कोई जानता नहीं, दुनिया की जितनी भी पढ़ाई है उसमें ये बात गायब है, ये बात ऋषियों के कलम से लिखी जाती है जिसको हम शास्त्र कहते हैं, ऋषियों की वाणी से ये प्रकट होती है, तो इसलिए इसको ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, इसका नाम है आत्मविद्या या अध्यात्म विद्या। तो ये परफेक्ट साइंस है जो वैदिक काल से लेकर आज तक जब से हम हिस्ट्री जानते हैं कभी चेंज नहीं हुई, ये इटर्नल लॉ है, सदैव ऐसा ही रहता है। तो जिस जीव ने शांति पानी है, सुख दुख के बंधन से मुक्ति पानी है, जिसने आनंद पाना है या जिसने मोक्ष पाना है, उसको ये विज्ञान सीखना ही पड़ेगा, और इस विज्ञान के प्रकाश में मेरी दिनचर्या बीतनी चाहिए। संसार के कर्म करते हुए मुझको ये होश बना रहना चाहिए, मन की गति इसको दिखाई पड़नी चाहिए, देखो मेरे मन में क्या संकल्प उठ रहा है और ये मुझे कैसे नचाएगा। आप स्वागत नहीं करते संकल्प का, कैसा नचाएगा ये वो दिखाई पड़ने लगता है आपको, फिर आप एनालिसिस करते हो, उसका विश्लेषण करते हो कि इसको पूरा करना कर्तव्य के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। यदि कर्तव्य के अंदर आता है, मान लिया बच्चे भूखों मर रहे हैं घर में, तो मन में संकल्प आता है कुछ पैसा कमाओ भाई, कुछ इनके लिए इकट्ठा करो, तो आप करो मैं तो नहीं कमाता, हरामखोरी कर रहे हो आप, तो आपके अंदर ये भाव आएगा ये मेरा कर्तव्य है। बच्चे जब परिवार में है, ये ईश्वर ने मुझको जिम्मेदारी दी है, तो इस जिम्मेदारी को मैंने पूर्ण करना है, तो उसका हुक्म मानते हुए, कर्तव्य देखते हुए, कर्तव्य भावना से उस कर्म को आपने करना है। कर्तव्य भावना से जब करते हो तो उसके सुख दुख से आप मुक्त रहते हो, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग से आप मुक्त रहते हो, वो कर्म करना आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है वो भाव नहीं है आपको, कि जो प्रिय लगता है वो करते हो ना, वो नहीं, वो प्रिय या अप्रिय है आप उसको करोगे, कर्तव्य भाव से करोगे, उसका बंधन आपको नहीं होगा, वो बोझ आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, है नहीं, आप उस कर्तव्य को करके प्रभु का सिमरन करते हुए, उस कर्तव्य कर्म को करते हुए भी प्रभु का सिमरन करते रहोगे, उसके बाद भी प्रभु का सिमरन कर पाओगे। तो संसार में जिसके पास विवेक है, इसको विवेक कहते हैं, इस समझ को विवेक कहते हैं, संसार में जिस मनुष्य के पास ये विवेक है, वो इस विवेक बल से चिंतन करता है और संसार में कर्तव्य भाव से कर्म करता है, भोग विलास के लिए कर्म नहीं करता। भोग विलास की जगह उसका जो कर्म है, उसका जो जीवन है, वो किस वास्ते व्यतीत होता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए, जहां परमानेंट लाइफ है, जहां इन मन के संस्कारों से 100% मुक्ति है और जहां सदैव का जीवन है, जो अचेतन चीज नहीं है, जो चैतन्य है, वो चैतन्य महाप्रभु, इसीलिए वो मेरा निज घर है। मन मेरा निज घर नहीं है, अभी तो मैं मन रूपी घर में रह रहा हूं। मन ऐसी नाव है जो हिचकोले खाते ही रहती है, पानी के अंदर हमेशा हिलती ही रहती है। तो शांत नाव है वो प्रभु की, और उस देह के अंदर ही वो मौजूद है। तो मैं क्यों ये संसार में गोते खाता रहूं? तो गुरु की बात मानकर, उसका विज्ञान सीखकर, मैं निश्चिंत होकर प्रभु की याद क्यों ना करूं? दुनिया का भय तो ये मेरे संस्कार है जिसके कारण भयभीत होता हूं। ये तो भयभीत होने की जरूरत ही कुछ नहीं। अरे तो ईश्वर के हाथों में सदैव ही सुरक्षित है। इस देह की मौत के वक्त भी तू सुरक्षित है। सदैव तुझको यह ध्यान बना रहता है, मैं देह नहीं हूं, मैं वो जीव हूं जो मन के कारण परेशान है, जो तन के कारण परेशान है, जो संसार के कारण परेशान है। तो मन, तन, संसार जिसके कारण परेशान है, उस परेशानी से मुक्त होने के लिए मनुष्य जन्म दिया ना, और इसी के लिए ये विद्या, अध्यात्म विद्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम मनुष्य के लिए, सबसे कीमती काम, सबसे कीमती विद्या तो ये अध्यात्म विद्या है, जो उसको सीखनी ही चाहिए। और इसको सीख कर अंतर्यामी प्रभु के लिए जीना चाहिए। बाकी संसार में कर्तव्य भाव से मैंने रहना है, ना कि इच्छा पूर्ति के लिए रहना। ये काम वही कर सकता है जिसके अंदर ये विवेक हर वक्त बना रहता है। और ये तभी बना रहेगा जब आप इसके अनुसार अपना चिंतन बार बार बनाएंगे, और जब आप इसके अनुसार अभ्यास करेंगे, सिमरन करेंगे, सत्संग श्रवण करेंगे, शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे, और स्वार्थ कर्म कम करके परमार्थ कर्म या सत्कर्म ज्यादा करेंगे, तो आपका स्वभाव ऐसा बन जाएगा कि हर वक्त आपको ईश्वर की याद आएगी, और ये विचार, सत विचार आपके मन के अंदर ये परमानेंट बन जाएगा, हर समय होश में रखेगा। तो ऐसी हालत में संसार की चिंताएं, संसार की कष्ट, संसार के भोगला, संसार की इच्छाएं आपको परेशान नहीं करेंगे, और धीरे धीरे ये जीव अंतर्यामी ईश्वर के नजदीक दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, और एक दिन खुद ही देखेगा कि ईश्वर का प्रेम अंदर प्रकट होने लगा है, उसकी ठंडी हवा, प्रेम की हवा मुझको मिलने लगी है। जैसे समुद्र के नजदीक कोई व्यक्ति पहुंचता है, अभी समुद्र दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ठंडी हवा आ रही है उधर से, उसको पता लग गया कि समुद्र अब दूर नहीं है। तो अंदर से यही गति होने लगती है कि प्रभु के आनंद की लहरें, उसका प्रेम अंदर प्रकट होने लगता है। तो इसके अंदर फिर एक आशा जागृत हो जाती है कि प्रभु दूर नहीं है। तो वो सारे सिम्टम्स शास्त्रों में लिखे होते हैं। तो जो भी साधना करता है, जो भी ईश्वर की भक्ति करता है, उसको वो आनंद मिलता ही है। और जब प्रभु का आनंद मिलता है, तो संसार का कष्ट हमेशा हमेशा के लिए उससे विदा हो जाता है। तो ये कोई कहानी नहीं है कि मैं जीवात्मा हूं या जीव हूं, ये मेरी रियलिटी है। क्योंकि मैंने इस विज्ञान को सीखा नहीं गंभीरता से, इसीलिए दो चार बात सुनने मात्र से ये बात कभी आपको टिक नहीं सकती। ये पूरा एनालिसिस आपको चाहिए। इसलिए इस वार्तालाप को आप रोज एक बार सुनने की आदत डालें, क्योंकि यही सोचना है आपने, तब आपको प्रभु की कीमत पता लगेगी, आध्यात्मिक विचारों की कीमत पता लगेगी, गुरु की कीमत पता लगेगी। और संसार कैसे जहर मेरे मन में घोल रहा है, इस विष की भी आपको पता लगेगी, कितना गहरा विष। तो इसलिए महाजी की वो बात याद रखें, संसार देखने में सुखदायी प्रतीत होता है, परंतु अंदर से विष रूप है। और जगतगुरु शंकराचार्य लिख रहे हैं कि साधना काल में शुरू में ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना विष रूप नजर आती है, लेकिन परिणाम में वो अमृत रूप है। तो कोशिश करनी है तो अमृत के लिए करूं, विष के लिए नहीं, तब जाकर ये पता लगेगा कि क्यों महाराज जी ने कहा कि प्रभु के सिमरन कार्य में ये दुर्लभ जीवन। ओम ब्रह्मा।